सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 19 श्लोक संख्या 18।
श्री बलिरुवाच अहो ब्रह्मण्यदायाद वाचास्ते वृद्धसम्मतः अहो ब्रह्मण्यदायाद वाचास्ते ब्रह्मसम्मतः त्वं बालबालिसम्मतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा त्वं बालबालिसम्मतिः स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा श्रीवणिरुवाच ओहो ब्रह्मणदायाद वाचस्ते ब्रह्मसम्पदा वाचास्ते ब्रह्मसम्मता त्वं बालबालिसम्मति स्वार्थ प्रत्यो बुधो यथा।
शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए
श्री बड़ी उपाच
बड़ी महाराज ने कहा
अहो
अहो कितनी आश्चर्य की बात
ब्राह्मण दायाद
हे ब्राह्मण के पुत्र
वचन
ते तुम्हारा
वृद्ध सम्मता
वृद्ध तथा गुरुजन को मान्य है
त्वं
तुम ಬಾಳಿಸಮತೀ ಬಾಳಿಸಮತಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಬಿನಾ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಅಪನಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಪನಾ ಹಿತ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಬುದ್ಧ ಠೀಕ್ ಸೆ ನ ಜಾನ್ತೆ ಹುಯೆ ಜಥಾ ಮಾನವ. तो यहाँ बड़ी महाराज बामन देव से कह रहे हैं, तो कितनी आश्चर्य की बात है, तुम बड़ी मतलब तुम निरा बालक हो, क्योंकि भगवान क्या बन के आए थे, बामन बन के. तो बड़ी महाराज को दिखाई पड़ रहे थे बच्चा है, इसलिए कह रहे कि कितनी आश्चर्य की बात है, तुम ब्राह्मण पुत्र बन के आए हो और आपका जो बोली है ना, वाचस्ते वृद्ध सम्मता, आपकी जो बोली है, वृद्ध का मतलब है वय वृद्ध, उम्र में जो वृद्ध है, और दूसरा होता है ज्ञान वृद्ध. तो गुरुजन के द्वारा वा बड़े बूढ़े के द्वारा आपकी बात को मान्य किया जाता है, मानते हैं ये बात सही है. और दूसरे जो विद्वान जन है वो भी एक वृद्ध है, वो भी आपकी बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक बात आप बोले. परंतु इससे लगता है स्वार्थम प्रति अबुद्धता, आपका तो बोली बहुत हाई स्टैंडर्ड की है, लेकिन आपका जो सोच है ना अपने स्वार्थ के बारे में बहुत कमजोर है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा स्वार्थ व हित करने वाला क्या है. किसके विषय में पूछे, क्योंकि बामन देव ने तीन पद भूमि मांगे थे, तो इससे क्या होगा तुम्हारा. अभी तात्पर्य सुनिए, श्रील प्रभुपाद की जय. भगवान अपने में परिपूर्ण है, अतः उन्हें अपने स्वार्थ के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए. अतः भगवान बामन देव बड़ी महाराज के पास स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए थे, जैसे कि भगवत गीता 5:29 में कहा गया है, भुक्तारं जज्ञ तपसां स्तर्वलोक महेश्वरः. भगवान इस श्लोक के तथा स्वर्गलोक के सभी लोक के स्वामी हैं, भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता है. बड़ी महाराज ने ठीक ही कहा है, बामन देव को अपनी हित के लिए तनिक भी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं. बामन देव अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु अपने भक्तों के कल्याण के लिए बड़ी महाराज के पास गए थे, बुद्धि से काम नहीं ले रहे. भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे स्वार्थ की बड़ी चढ़ा देते हैं. इस तरह भगवान भी अपने निजी स्वार्थ न रखते हुए भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं. जो स्वयं पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे होगा. मेरे पीछे इसके अनुवाद दोहराइए. बड़ी महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा बड़े वृद्ध पुरुषों के द्वारा मान्य है, तो भी अभी तुम निरा बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतः तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है. ओम अज्ञान तदरंधस्य ज्ञानांजनस्य चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगणार्भनाथं नित्यं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖానితాంసం హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి వంశాకల్పతరుభ్యః కృపాసింధుభ్యేవ చ పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ శ్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమదే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణీ నిర్విశేష శూన్యవాది పశ్చాత్యదేశధారిణీ జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ రామ
హరే కృష్ణ. आप लोग जानते हैं कि जो बामन देव के प्रकट होना और बड़ी महाराज के साथ इस प्रकार व्यवहार करना किस प्रयोजन के लिए हुआ था, किस लिए? तीन पग क्यों मांगे? इंद्र के राज्य कौन छीन लिए था? बड़ी महाराज असुर लोग छीन लिए थे, इसलिए क्या हुआ? अतिथि ने कौन उनको बोला इसे करने के लिए? क्यों कहे? पर्यव्रत अदित ने क्यों की? जो बड़ी को हरा सके, ऐसे पुत्र चाह रहे थे जो बड़ी को हरा सके और स्वर्ग के राज्य को अपना पुत्र प्राप्त कर सके. जैसे श्री राधा राधिका रमण जी की जय, श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय. तो आप लोग प्रसंग को याद रखें, बहुत धन्यवाद. इसके बाद जब दीति अदिति ने पर्यव्रत विधि को अपनाया, कितने दिन तक अपनाया? 12 दिन तक. एक्चुअली विधि कितने दिन तक पालन करना चाहिए? 13 दिन. विधि 13 दिन तक पालन करना चाहिए. तो भगवान अदिति की पुत्र के रूप में प्रकट होने की जो बात है, पुत्र की पुत्रता को स्वीकार करने की जो मन बनाए, किस कारण से, क्यों भगवान अदिति के पुत्र बने? गुड. अदिति ने कश्यप मुनि की बहुत अच्छी तरह से भक्ति की. और भगवान क्यों कश्यप मुनि के पुत्र क्यों बने, उनके भी पुत्र क्यों बने? एक्चुअली कश्यप मुनि तपस्या करके और भगवत ज्ञान को प्राप्त करके उनके चित्त विशुद्ध हो चुका था. भगवान गीता में कहते हैं बहुत ज्ञान तपसा पिता मद्भाव आगत। तो कश्यप मुनि ज्ञान और तपस्या से इतनी पवित्र हो चुके थे, तो भगवान माता अदिति से कह रहे हैं कि मैं कश्यप का तपस्या से मैं उनकी पुत्र बनने की मन बनाया है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र हो चुके हैं और मुझे पहले से अपने हृदय में धारण कर लिया। तो जब अदिति ने इस प्रकार व्रत की तो भगवान प्रकट हुए उनके सामने, और पहले से भगवान सब कुछ जानते थे कि अदिति के मन में क्या संकल्प है और क्या कामना है। तो भगवान कहे कि देखो, अभी जो बड़ी है ना, वो सुरक्षित है, स्वर्ग में सुरक्षित है। तो अदिति ने कहा किस प्रकार सुरक्षित है? कहते वो स्वार्थ से सुरक्षित नहीं है, धन से सुरक्षित नहीं है, पर स्वर्ग के वैभव से सुरक्षित नहीं है। किस प्रकार सुरक्षित है? ब्राह्मण के द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि भृगुवंशी ब्राह्मण को उन्होंने पुरोहित के रूप में स्वीकार किए हैं। इसलिए जो व्यक्ति ब्राह्मण और गौओं और वेद के द्वारा सुरक्षित हैं, उसको भगवान चाहने पर भी उसको अनिष्ट नहीं कर सकते, देवता फिर क्या कर सकते हैं, आप सोचिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्राह्मण की शक्ति से सुरक्षित है। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारा भी तपस्या निष्फल नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे जो भक्ति करता है, आराधना करती है, पूजा करता है, तो उनकी पूजा आराधना निष्फल नहीं जाता है। इसलिए मैं कुछ ना कुछ उपाय सोच रहा हूं, मैं करूंगा, तुम धैर्य रखो। और भगवान ने परोक्ष रूप से यह कह दिए कि जो ब्राह्मण के द्वारा सुरक्षित हैं, वही ब्राह्मण के प्रति अपराध करने से उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। तो इसलिए भगवान केवल बैना बनकर नहीं आए, बच्चा बनकर के नहीं आए, कैसे बन के आए? ब्राह्मण। और दूसरा, जो ब्राह्मण के द्वारा सुरक्षित है तो वही ब्राह्मण के द्वारा तिरस्कृत भी होगा, उनके हिसाब से नष्ट होते। इसलिए भगवान एक ड्यूअल फ्लैम बनाए, और भगवान के स्वार्थ को कोई नहीं जानता है। इसलिए जहां बड़ी महाराज स्वर्ग की राजा बनने के लिए, इंद्रपद को प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे भृगुकच्छ नामक एक स्थान में, वहां भगवान अपने तेज के साथ ऐसे प्रकट हुए। बड़े महाराज जजमान थे, उठकर खड़े हो गए। भगवान वामन देव को इतनी भव्य रूप से स्वागत किए, तो कश्यप शरीर शुक्राचार्य ने देखकर हैरान हो गए, अरे बड़ी जगह छोड़कर के उठ गया। और शुक्राचार्य बहुत विद्वान है, जो भगवान की स्वरूप छिपने पर भी वो खोल दिए, अब इनको सामान्य नहीं समझना चाहिए। वो कहते हैं तो विष्णु है, बड़ा छलिया है, देवताओं के स्वार्थ साधन करने के लिए तुम्हारे पास ऐसे बच्चे बनकर के आए हैं, बड़ी ध्यान रखो। तो मत दो दान, इस बात को जो जान गए थे। तो यहाँ पर जो प्रसंग है, जब भगवान वामन देव प्रकट हुए तो बड़े ने उनको स्वागत किए और उनसे याचना की, तुमको क्या चाहिए बताइए, धन चाहिए, हाथी, घोड़ा, राज्य वैभव, और तुम एक ब्राह्मण का लड़का है, आगे चलकर के तुम शादी विवाह करोगे, कुछ लड़की चाहिए, ब्राह्मण की लड़की, ये भी दे सकता हूं, राज्य मांग लो, है ना, फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए, है ना, नहीं तो फैमिली कैसे मेंटेन करो, ब्राह्मण तो नौकरी नहीं कर सकता, बोलो। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, ऐसे जो विद्वान होते हैं, विद्वान न प्रतिग्रह, ज्यादा प्रतिग्रह नहीं करते, ये आप मिल जाए वो मिल जाए, वास्तविक जो ज्यादा एक्सपेक्ट करता है वो अपने मानसिक शांति को खो देता है, बहुत बड़ा स्वार्थ को खो देता है। इसलिए भगवान बड़े के सामने कह रहे हैं न अन्य कामय, मुझे और कुछ कामना नहीं, इच्छा नहीं है राजन। हालांकि आप बदान्य है, बहुत बड़ा दानी है, आपके पास असीमित संपत्ति है, परंतु मुझे कुछ आपकी संपत्ति से लेना देना नहीं है, पर किसी प्रकार मुझे संपत्ति की कामना नहीं है, ना कामय। और यहां तक आप क्या है, मैं ईश्वर से भी कामना नहीं करता हूं, भगवान ने कितने छल करके बोल रहे हैं, तुम अपने को ईश्वर सोच रहे हैं ना, परंतु भगवान उनको ऐसे नहीं कहे, बहुत प्रशंसा किए थे उनके पूर्वजों के, प्रह्लाद विरोचन उसके पहले हिरण्यकश्यप की कितनी प्रशंसा करके, चिकनी चिपड़ी बातें कह करके बड़ी को फंसाए। और फिर कह रहे कि देखो, तो बड़ी तो एकदम पपटक हो गया ना, अरे देखो हमारी फैमिली कितनी ग्लोरियस है, हाँ, और ये ब्राह्मण प्रशंसा कर रहे हैं। तो बड़ी के मन में क्या आ गया, दंभ। और भगवान चाहते हैं अपने भक्तों के हृदय में ये जो दंभ जो है, आसुरी गुण है, उसको नष्ट करें। निज जन स्मया भंसनास्मित, निज जन स्मय, अपने भक्तों की, अपने लोग की स्मय, ये जो दंभ जो है स्वयं भगवान नष्ट करते हैं। यहां तक कि राधारणी के मन में भी जो थोड़ा दंभ उत्पन्न हुआ, आई एम द सुप्रीम सर्विटर, मैं कृष्ण को बस में कर लिया हूं, मुझे स्वयं श्री कृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर के मुझे कंधे में लेके चल रहे, हाउ आई एम ग्रेट। राधारानी तो खुद भी सोच रही थी मैं कितनी महान। तब भगवान भक्तों के सब प्रकार के उपद्रव को सहन कर सकते हैं, परंतु ये सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्ति जीवन में बहुत बड़ा खतरा है, दंभ। इसलिए भागवत में जो जो पाष्टांश हैं, ये भक्तों को जीवन का उत्कर्षता प्रदान करता है, भक्ति भगवती नष्ट की, भक्ति जीवन में नष्टिकता लाने के लिए व अनर्थ को दूर करने के लिए, अनर्थम उपसंग साक्षात भक्ति योगम प्रयोजित जनस्य लोकस्य जानस्य विद्वान चक्रे सत्वसमित। ये अभद्र है हम लोग जानते नहीं, ये छिपा हुआ शत्रु है, जो दंभ दर्प अभिमान, ये तीनों ही बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। भगवान सोलह अध्याय में शायद 14 श्लोक में कह रहे हैं, दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुस्य एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदं आसुरी। कति आसुरी संपत्ति है, यू कैन नॉट परचेज सुप्रीम लॉर्ड बाय दिस वेल्थ। ये संपत्ति के द्वारा आप भगवान को खरीद नहीं कर सकते हैं, भगवान दैवी संपत्ति के अधीन है। इसलिए दंभ का मतलब क्या है? हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दंभ की परिभाषा दे रहे हैं। दंभ स्व स्वस्य अधार्मिक ते अपि धार्मिकत्वं प्रख्यापनम्। स्वयं अधार्मिक हैं लेकिन धार्मिकता का स्वांग रचाता है। आप जानते हैं कभी इंद्र घोड़ा चोरी करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो सन्यासी बन करके गया था, पृथ्वी महाराज जब यज्ञ कर रहे थे। तो देवता के अंदर भी कभी कभी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, हाँ, जब भी हम नहीं समझ पाते हैं कि स्वार्थ असली स्वार्थ क्या है, तो फिर हम असुर संपत्ति के अधीन हो जाते हैं। असली स्वार्थ क्या है? क्या है असली स्वार्थ? निद्रा। किंतु सबसे आनंददायक है जीवन का वो है निद्रा। ये असली स्वार्थ है। जिसके नींद पूरा नहीं होता है ना, तो बेचैन रहता है, उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। इसलिए भक्त लोग की यही संपत्ति है कि क्लास में नींद को पूरा करना, बेड पर तो बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो असली स्वार्थ क्या है?
न ते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिन।
बहिरर्थ, उसको वो स्वार्थ मानते हैं, परंतु असली स्वार्थ क्या है? स्वार्थ गति ही विष्णु, जो सबके हृदय में प्रवेश करते हैं, विष्णु विशद ये थी, वही स्वार्थ है, उनको जानना ही स्वार्थ है और दूसरे नहीं है। स्व अर्थ वही प्रयोजन है। स्वार्थ का मतलब है स्व अर्थ, अपना संपत्ति वही है भगवान। बड़ी महाराज सोच रहे थे मेरे पास क्या क्या स्वार्थ है, हाथी घोड़ा राज्य वैभव गाड़ी मटर बैंक बैलेंस, इसलिए सोच रहे थे ये ले गए। वही सोच रहे हैं ना कि ये आपका स्वार्थ है। मुझे लगता है आप बेवकूफ हो, बातें तो बड़े बड़े करते हो विद्वान जैसे, परंतु नहीं जानते हैं कि कितनी मजा है गाड़ी मटर में बैठ के जाते हो, हॉर्न लगाते हो, ट्रैफिक में फंसते हैं, घर में कब पहुंचना है, फास्ट स्पीड। तो वही अर्थ मानना, इसको वो स्वार्थ मानते हैं। रेस्पेक्ट, एस्पेक्ट फॉर रेस्पेक्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धन विद्यादि हेतुकम गर्व अभिमान अन्य कृतः सम्मान आकांक्षितम्। अभिमान का मतलब क्या है? दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा है, इसको कहते हैं अभिमान। दर्प का मतलब है धन विद्या आदि हेतु का। धन अच्छा है, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा घर है और बहुत क्वालिफाइड है, सुंदर शरीर है, बहुत सारे संबंधी हैं, सुंदरता है, ये क्या उत्पन्न करता है? दर्प। ये सटल एनमी है। और भगवान बड़ी महाराज को बांधने की बात फिर सिखा देते हैं कि जिनके पास ये होते हुए निराभिमान है, मेरे भक्त हैं, तो उनको ये सारी चीज प्रभावित नहीं करता है। इसलिए भगवान कहते हैं अकिंचन वित्त, कुंती महारानी स्तुति करती हैं, नम किंचन वित्ताय निर्गुण गुण प्रत्यय आत्मानामाय संताय कैवल्य पदये नमः। तो भगवान वास्तविक इस संपत्ति के द्वारा वशीभूत नहीं होते हैं, वो तो अकिंचन के द्वारा भक्ति, अकिंचन आना वित्त, जिनके पास ये संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति होने पर भी अभिमान नहीं। तो श्रीमद् भागवत में तीन फ्रेज हम देखते हैं कि भक्त होते हुए भी अभिमान उत्पन्न होता है, जैसे दक्ष प्रजापति शिव जी की स्थिति को वो समझे नहीं, वो सिर्फ शरीर के संबंध में ही शिव जी को नाप रहे थे, कहते शिव जी मेरे दामाद हैं। तो इसी प्रकार जिसका एक्सटर्नल विजन है वो तत्व को नहीं समझ पाएगा, ही कैन नॉट एंटर इन स्पिरिचुअल किंगडम, स्पिरिचुअलिटी क्या है वो नहीं समझ पाएगा। हालांकि हम भक्तों की भेष ले सकते हैं, पर हम यदि ये अभिमान है कि मैं अच्छे परिवार से हूँ, अरिस्टोक्रेट फैमिली से हूँ, मैं इतनी पढ़े लिखी हूँ, बहुत सारे भक्त भी ऐसे बोल देते, आप हमारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते, आप हमको क्या समझते हैं, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, एक भक्त वाच, एक भक्त ने इस प्रकार कहा कि सूरदास प्रभु आप इस प्रकार मेरे साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, हम ग्वान नहीं। उत्पन्न होता है, इसलिए जो भक्त के अंदर इस प्रकार स्तब्ध है, तीनों मिलने पर होता है स्तब्ध, स्तब्धान पश्यन्ति हि धाम भूयसा, भूयसा का मतलब है जो महिमा निद व्यक्ति, जो हमारी पर्सनैलिटी है, अकिंचन भक्त है, महाभागवतम भक्त, उसकी स्थिति को नहीं समझ पाएगी। हम अपने तराजू से, मन तराजू से उनको हम तोलते हैं। तो इसलिए दक्ष प्रजापति के मन में दंभ उत्पन्न हुआ, किस कारण से, क्योंकि उनके पिताजी ब्रह्मा ने उनको प्रजापतियों का हेड बना दिया, पोजीशन, और दो यज्ञ जो बहुत बड़े बड़े यज्ञ होता है सेरेमनी, जिसमें सारे देवता पार्टिसिपेट करते हैं, उन दोनों यज्ञ का भी चीफ बना दिए, बृहस्पति सब और वाजपेयी यज्ञ। तो उनके मन में दंभ उत्पन्न, यहां तक कि अपने पिताजी को रेस्पेक्ट नहीं किए, और एज ए रिजल्ट कहते ये जिसके मन में इस प्रकार भावना होता है वो बहुत लस्टी होता है। इसलिए दक्ष प्रजापति को कौन सा सर मिला, बकरे का, बकरा बहुत लस्टी होता है, भोग जहां भी कुछ भी मिल जाए मुंह चबाता रहता है, और बोली उनका सीधा साधा नहीं है, समझ तक तो बोली नहीं है। सेकेंड हम देखते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, हिरण्यकशिपु, इता भक्तों का अपमान किया, हालांकि जो शिव भी है वो बहुत मंगलमय है, उनकी गुण जो है भगवान के समान ही है, और बहुत मर्सीफुल है, सारे संसार के मंगल करने के लिए उनके शिव नाम ही दिया गया है मंगल में, परंतु उसमें कमी दिखा। तो भगवान तो टॉलरेट नहीं करते हैं, जो भगवान को अपमान करता है तो भगवान सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्तों को नहीं। और बड़े ब्राह्मण कौन था, भृगु था ना, वो भी समर्थन कर रहा था, तो उसका मूछ दाढ़ी निकाल लिए थे सब, कौन निकाल लिए थे, वीरभद्र। तो इनको बकरा का सर मिला, और उसका जो मूछ दाढ़ी था बकरा का वो भृगु को मिला, कहते तुम बकरा के साथ दिए, उसको मूछ दाढ़ी उसकी मिला बकरा का, जो रेस्ट बच गया था निकाल कर उसमें पहना गया, और पूसा वो दान दिखाया था, बहुत अच्छा है, किसी भक्त का अपमान हो रहा है तो तुमको स्थान छोड़ देना चाहिए, लेकिन पूसा ने दान दिखाया, बहुत अच्छा हुआ। तो वीरभद्र आदि शिवगण उनका दांत निकाल लिए, सब तोड़ दिए। और जब शिव जी को संतुष्ट किए, आखिर में उनको क्या किए, शिव जी क्या कहे कि पूसा तो उसका नाम है, वो पिसा हुआ ही खाना चाहिए, छत्तू खा लेना चाहिए पानी में घोल करके, हलीस पाउडर खा लेना चाहिए, चुबाना नहीं चाहिए और इजिली डाइजेस्ट है। अगर जो चाहता है खाने के लिए, अपने जो शिष्य है ना, चेला है, उनकी मुंह से खा सकता है, अर्थात उनकी उचिष्ट खाएगा शिष्यों का। इसी शब्द ये परिणाम। तो असु जो वास्तविक भगवान के भक्त हैं, हालांकि वो गाली देते हैं भगवान को, परंतु वो भगवान की महिमा की गुणगान करते हैं परोक्ष रूप से। सातवां स्कंद में, हाँ दूसरा अध्याय में, जब हिरण्यकशिपु भगवान बराहदेव ने संहार किए, उसके बाद हिरण्यकशिपु सभी असुरों के सामने भगवान विष्णु को गाली देता है। वो क्या कहा, कहता ये विष्णु अच्छा व्यक्ति है, व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी उनको बहुत अच्छा है, और पहले तो हम न्यूज़पेपर में पढ़े थे कि उनका स्वभाव ऐसा था, किसी प्रति पक्षपात नहीं करता था, शासन उनके अच्छा था, सबके प्रति संभावना रखता था, कि जैसे किसी पति का दो पत्नी है तो इस प्रकार व्यवहार करता है कि सभी पत्नी को वह संतुष्ट करके रखता है। तो इसी प्रकार ये विष्णु का ऐसे स्वभाव था, सपत्नी ध्याति तक क्षुद्री भ्राता में दैतम स्वरूप, अच्छा तो था, लेकिन अभी ये जो क्षुद्री हृदय वाले ये देवता लोग अपने स्वार्थ चाहते हैं ना, वो क्या के उपधावने है ना, पीछे पीछे दौड़ धाम करके उसको फंसा लिए। जैसे ये जैसे बड़ी ने कह रहे कि आप बालक हो, उन्होंने भी इस प्रकार कहा कि उन्होंने इस प्रकार देवताओं की अधीन हो गए, जैसे कोई बच्चे को टफी देकर के, मिठाई देकर के उसको अपने बस में कर लेता है, तो इसी प्रकार ये विष्णु भी बस में हो गया। प्रासनी ग्रहण हरिणा समय न अपि उपधाव नहीं तस्य त्वक्त स्वभावस्य घृणेर माया बनोकसः भजंत भजमानस्य बालस्य इव अस्थिर आत्मना। बालक बहुत चंचल होता है, लेकिन उसके चंचलता को कैसे बस में किया जाता है, इधर आओ देखो मिठाई है ना, बस बच्चे आ गए पट से, है ना, मिठाई देखने पर आ जाता है, दीजिए ना। तो इस प्रकार ये भगवान विष्णु भी बाली सा, मतलब उसका बुद्धि भी बालक जैसे, बहुत अच्छा है कि भगवान को बच्चा कहने से भी एक सुंदर लगता है। सरस्वती जी प्रार्थना करता है कि देखो इंद्र भी गाली दिया था बाली से कह करके, जानते हैं ये जो बाली से शब्द आए हैं, बच्चा है निराम। इंद्र भी कहा था बाचालम बालिसम स्तब्ध अज्ञा पंडित मानिना। तो श्रीधर स्वामी बाली से शब्द का अर्थ कहते हैं कि बालक, जैसे बालक के अंदर कोई कपटता नहीं होता है, कि दिखावा नहीं होता है, बहुत सरल होता है ना, कोई प्लान नहीं करता है किसको दुख देने की, किसको गिराने की, अपने की विजय का कोई इच्छा नहीं रखता है, मुझे जीत होगा, कहते भगवान निष्कपट है। बाणी सर बाचाड़म बहुत बोलने वाले, बच्चा भी बोलता है बहुत, है ना, लेकिन वो तोतली बोली माता पिता को बहुत आनंद देता है। तो इस प्रकार भक्त का जो ना भगवान की जो बोली है वो भक्तों को बहुत आनंद प्रदान करता है, इसलिए वेद उपनिषद कि ज्ञान देने पर भी भगवान कुरुक्षेत्र में बोल दिए, फटाफट बोल दिए। देखो 700 श्लोक उसमें से 541 श्लोक ना भगवान बोले अर्जुन के सामने फटाफट, कहते 45 मिनट में भगवान भगवद गीता की ज्ञान दे दी अर्जुन को, विथ रियलाइजेशन. हम 700 श्लोक पढ़ने के लिए कम से कम 2 घंटा लगता है. तो भगवान हाँ बाड़ी सा बाचाल होने पर भी क्या है उनका है स्तब्ध. कहते ये बहुत स्तब्ध है, घमंडी है, ये किसके सामने सर नहीं झुकाता है. स्तब्ध का मतलब है जो किसके सामने सर नहीं झुकाता है. तो कहते अरे भगवान किसके सामने सर झुकाएंगे, अरे उनको तो सब प्रणाम करते हैं. तो इसलिए जन ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदसंग क्रम उपनिषद गायन्ति च श्यामगा ध्यानवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जन योगिनः जस्यान्तन विदुसुरा सुरागणः देवाय तस्मै नमः. कृतांजलि युक्त हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, दिव्य स्तुति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं. उनकी खड़ाव पर मस्तक झुका करके ब्रह्मादि देवगण लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं. वो किसको प्रणाम करें, वो प्रणाम करते हैं भक्त को प्रणाम करते हैं. अहम भक्त प्रार्थना वही खड़ाव को उठाते हैं, नंद बाबा की खड़ाव सर पर, माता जसोदा की पीढ़ा को भी सर पर लेते हैं. 3 बार पाद वंदना करते थे युधिष्ठिर महाराज की. परंतु ये घमंडी लोगों का भगवान को स्तवन नहीं करते, उनके सामने सर नहीं झुकाते. स्तब्ध का मतलब है जो घमंडी है, दंभी है, उनके सामने भगवान सर नहीं झुकाते. पंडुर गाया, भगवान ने कहा ठीक है मैं तुमको जवाब दूंगा. तुम लिखे है ना सुदर्शन चक्र छोड़ दो, मैं छोड़ूंगा, लेकिन तुम रख लेना हाथ में पकड़ना. और छोड़े भगवान. स्तब्ध अज्ञ पंडित मानिना, अज्ञ का मतलब है जो जानने के लिए कुछ नहीं है, बाकी नहीं है. हम ऐसे कहते ना जो मूर्ख है अज्ञ है, परंतु भगवान के जानने के लिए कुछ नहीं है. वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि न त्वं वेत्थ परंत. लोग मुझे नहीं जानते परंतु मैं सब कुछ जानता हूं. पंडित मानिना, जो कह रहे कि अज्ञा है फिर भी अपने को पंडित समझता है. लेकिन सरस्वत जी कह रही हैं कि जो विद्वान है वो भगवान को मानते हैं. विज्ञ जनेर जति हये कृष्ण गुण ज्ञान अन्य तेजि कृष्ण भजे उद्धव प्रमा. उद्धव को वास्तविक जब ज्ञान हुआ तो हमें सब कुछ त्याग करके माम एकम शरणम ब्रज, ब्रज के ओर दौड़ चले. भगवान ने वही शिक्षा लेने के लिए ब्रज भेजा. विद्वान व्यक्ति ही भगवान के भजन करते हैं. तो अविद्वान, अविद्वान कौन है जो अपने स्थिति को नहीं समझता है कि मैं कौन हूं. ये तीनों कारण से दंभ दर्प अभिमान और पारुष्य बहुत पुरुषता दिखाता है. क्योंकि कली प्रवेश किया कि कली के स्वरूप है दलाल, कष्ट देना, लेकिन कामीज पहना था कैसा, राजा जैसा, सज्जन जैसे. वो व्यक्ति भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते. तो हिरण्यकशिपु हालांकि गाली दिया लेकिन भगवान की स्थिति को समझा. परंतु जो प्रेजेंटेशन था ये लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति भगवान के विषय में जैसे इंटरप्रेट करते हैं. सिद्धार्थ कहते कि अगर यदि इंद्र भगवान की स्थिति को नहीं जानता तो भगवान क्यों उनके लिए अवतार लेते हैं. वास्तविक इंद्र ने जानता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति की बोली ऐसे होता है, चाली ऐसी होती है, वो सामान्य लोग उनको नहीं समझ पाए. विज्ञान क्या है, क्रिया मुद्रा विज्ञान है, बुझे वैष्णव क्रिया मुद्रा वैष्णव. और तो बड़ी महाराज इस प्रकार जब बोले भगवान से कि देखो आप अपना स्वार्थ तो नहीं जानते हो, ओह ब्राह्मण दायद, आप तो ब्राह्मण की संतान हो, क्योंकि उसमें वीरराघवाचार्य कहते हैं आप फिर भृगुवंश में जन्म लिए थे, हालांकि क्षत्रिय जैसे काम किए, कौन थे, कौन से काम किए, परशुराम, आप उस वंश में हाँ उस डिसेंडेंट मांग रहे हैं। अगर मैं ना दू ना, तुम ले सकते हो, तुम्हारी इतनी शक्ति है, ये भी कह रहे हैं ब्राह्मण दायित्व, मतलब आपके पास शक्ति है। वो कहते मैं सिर्फ निरा ही जेने नहीं डालता हूं, मैं फरसा को देखते हो ना राम, 21 बार ये पृथ्वी में सारे राजा को ढूंढ ढूंढ कर ही खत्म किया था, देखे हो ना लक्ष्मण संभालो इसको, ये देख रहे हैं कि ये 2 रुपया के जेने हुए है, अरे ये भी मैं कर सकता हूं, ऐसे थ्रीट की भगवान। तो बड़ी कह रहे कि आप ब्राह्मण दायित्व हो, अब वो भी काम कर सकते हैं, मैं जब ना भी दू ना तुम ले लोगी, और तुम बच्चन तो बहुत अच्छा बोली बोल दिए ना, बहुत हाई स्टैंडर्ड की बात बोल दिए, वृद्ध सम्मता बचस्ते ते बचा वृद्ध सम्मता, विद्वान विद्वान लोग खुश हो जाते हैं, जद्रुचा लाभ संतुष्टम धुंधातीत विमत्सरा सम सिद्ध सिद्ध उच्चना निबद्धते, विद्वान लोग फंसते नहीं है बंधन में, जितना मिल गया हम जय राम जी, क्या बोलते हैं जय क्या है सही, जैसे राम रखते हैं इसे ही रहना चाहिए, क्या बोलते हैं हाँ जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए, और सीताराम 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 बस, जय राम जी कहते झोला उठाते चल जाते हैं, वो फंसते नहीं है। तो आपका ऐसे का बुद्धि लगता है बहुत विद्वान जो का बोली है, लेकिन स्वार्थ प्रति अबुद्धता, आपका स्वार्थ नहीं जानते हो, जथा बाल बाली से मति, क्योंकि आप बालक हैं इसलिए आपकी मति चंचल है, शायद कोई प्रवचन से सुन लिए होंगे ऐसे, इसलिए आप धोरा दिए माइक्रोफोन में है ना, बातें आकर के, परंतु आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ रियलाइजेशन नहीं है, है ना, प्रति अबुद्ध, आपको ठीक से समझे नहीं है दिमाग से, अरे देख लो मेरी, मैं स्वर्ग लोक भी प्राप्त कर लिया हूं, उससे भी कुछ टुकड़ा ले लो, जमीन खेती बाड़ी तो कर सकते हैं, नहीं तो किसको दे सकते, भाई आधा तो दे देगा तुमको, ये ले लो, ये भी नहीं चाहिए तो बताओ, मेरे पास अनेक स्वर्ण मुद्रा है, मैं तुम्हारे खाता में जनधन योजना में जमा कर दूं, कोई टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट आते रहेगा, ये भी नहीं चाहिए, घर बना दो ये भी मांग लो, कहते नहीं। कि जो व्यक्ति स्वतः बिना प्रयास से जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाता है, उसके ब्रह्म तेज बढ़ता है, ब्रह्म तेज कैसे बढ़ता है पता है ना, पता है, जो हमेशा खुश रहता है, खुश मिजाज वाले, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, और लोग कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, आजकल सब क्या हो गया है, सब हंसी मजाक करने के लिए कुछ लोग आते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा बेस्ट जोक है, और लोग तो आर्टिफिशियल हंसी हंसते हैं पार्क में जाकर, हंसी हंसो लेकिन कोई अंदर से नहीं आता, बहुत चिंता रहती है, और जिस व्यक्ति का मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, लगता है कि पूरा ब्रह्मांड को अपने सर पर रख दिया है, संकर्षण से ले लिया है, इतना टेंशन रहता है, कहता है दे दो हमको, अरे थोड़ी सी जिंदगी बिताना है, भगवान कहते मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा परिवार नहीं है तो देखो ना बट्टू ब्राह्मण है भाई, क्या है जरूरत, क्या है मुझे कार बार का जरूरत नहीं है, इसलिए तो ब्रह्मचारी बहुत सुख रहते हैं, और भगवान ने ब्रह्मचारी बनकर के शिक्षा दे रहे, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए कि जाबत अर्थ, सिर्फ पेट भरने के लिए, ये जो आग जल रहा है ना पेट में, इसको बुझाने के लिए जितनी चाहिए भोजन उससे प्राप्त होने पर जो खुश होता है उसको सिद्धि प्राप्त होता है। इस ग्रेस बजेंद्रानंद प्रभु की इच्छा है। तो प्रहलाद महाराज यही कहते हैं, मादार गृहादिशु आप्तम जब प्राण वृत्ते परितृप्त आत्मवान। सिर्फ पेट भरने के लिए वह अपने जठराग्नि को शांत करने के लिए जितनी प्राप्त हो जाए उसको प्राप्त करके जो संतुष्ट है उसको तुरंत सिद्धि प्राप्त होता है। इसलिए वृंदावन के साधु है ना आराम की जिंदगी बिताते हैं, कमंडल में स्वीट राइस भर लेते हैं और खाने पीने में होशियार राम नाम में। तो पहले साधु तो कम खाते थे निद्राहार विहार का दे, लेकिन आज के साधु में एक विशेष लक्षण आ गया है, पेड़ तो बहुत भरते हैं लेकिन अजगर वृत्ति को अपना दिए हैं। ये भी एक साधुता है ना, खा पी के सो जा। हम साधु बन की सोए नहीं, गृहस्थ बन के रोए नहीं, है ना, सन्यासी बन कर खोए नहीं, तो क्या लाभ है, ऐसे लोग कहते हैं ब्रज में। तो इसलिए जो चिलमिट गंजा पी लो, स्वीट राइस भर लो, कमंडल में खाओ और सो, अच्छा नींद है, समाधि का फल मिल जाएगा सोने पर। तो प्रहलाद जी वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कहते जो आसक्ति से रहित हैं। तो यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, रोते हैं कौन जो ज्यादा आसक्ति रखते हैं गृहस्थ, जो पुत्र दार गृहादिशु आत्मा समेषु सत्सु, वही ज्यादा रोते हैं। जिसका जितनी अटैचमेंट है उसकी उतना आंसू है। परिवार बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति है, चना की आसक्ति है, बटल आपका बंधन नहीं है, डब्बा नहीं है, क्या है, चना की आसक्ति है, मुट्ठी पकड़ना और बाहर नहीं निकल पा। अरे इतना ले लो, दो तीन चना तो ले सकते हैं ना, नहीं मुट्ठी भरना है, बंदर है ना, मुट्ठी भर लेता है, काम तो ले लो। तो कहते जापत अर्थम प्रयोजनम, उतने से संतुष्ट हो जाना चाहिए, जदुच्छा लाभ संतुष्ट, जितनी नियत ने दे दिए उतने में संतुष्ट हो जाए। इसलिए जो बंधन है वो क्या है ना, जब तक कृष्ण के प्रति अटैचमेंट नहीं बढ़ता है तब तक हम घर गृहस्थी की कारागार में रहते हैं, ताबात कारागृहम गृहम ताबात राग दयस्तेना जावत कृष्ण नते जनाहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तब तक ये घर गृहस्थी जेल बना रहता है। ताबात रागा दयस्ते न, चोर कौन है, धन को लूटने वाले, राग आसक्ति अटैचमेंट, मोहांग्री निगिडम, और राग से क्या है, मोहग्रस्त हो गया, ये हो गया पूरा पहाड़ उठाए थे ना गिर गए, फैक्ट्री बंद हो गया, चिंता। वही क्या करता है, हाथ में पैर में बड़ी बांध देता है। तो बड़ी महाराज के मन में यही स्तब्ध था, आसक्ति था, और इसलिए अपने घमंड को दिखाने के लिए भगवान के सामने कह रहे हैं कि मैं एकमात्र ईश्वर हूं, तुम कल्प वृक्ष के पास आकर के चीनी के कण मांग रहे हो, चक्रवर्ती राजा के पास आकर के चॉकलेट मांग रहे हो, अरे ले लो, भगवान देते नहीं, पदत्रयम् वृणीते, मुझे तीन पद सिर्फ भूमि चाहिए, अरे मित्र में कुटिया भी नहीं बनेगा, अरे 50 गज 100 गज ले लो, है ना, कम से कम कुटिया बांध दो, कहते ये भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि तुम स्वार्थ प्रति अबुद्धता जथा बालम बड़ी सहमति, क्योंकि बच्चे का कोई चिंता नहीं रहता है, मेरी घर कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, बस पापा ने गोद में बैठा लिया तो चल रही है। भोजन करने भी चिंता नहीं रहता, बस टफी दिखा दो इतना में आ जाता, हाँ दे दो उतना हो गया। तो बाड़ी सहमति, तो भगवान कह रहे बाड़ी सहमति, मतलब भगवान की कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वार्थ क्या है, भक्तों के स्वार्थ। और भगवान का क्यों स्वार्थ नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, जो स्वयं पूर्ण है उसमें कैसे स्वार्थ आ सकता है, पूर्णस्य किं स्वार्थ अस्ति, विरराघवाचार्य कहते हैं, जो परिपूर्ण है उनके अंदर कैसे अभिलाष आ सकता है, सूर्य के अंदर कैसे अंधकार आ सकता है बताइए। सूर्य तक भी सोचे कि मैं अपॉइंटमेंट लेता हूं अंधकार से मिलने के लिए, है ना, फोन कॉल करके मैं अपॉइंटमेंट लेता हूं, क्या वो अंधकार के साथ मीट कर सकता है। भगवान भी सोचे ये मेरे स्वार्थ है, अरे भगवान तो परिपूर्ण है, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवम अवशिष्यते, उसमें सभी पूर्ण पूर्ण पूर्ण, कितने भी ब्रह्मांड भी चल जाए फिर भी भगवान कंप्लीट एंड फुल, बट वी आर फुल, भगवान फुल है, हम लोग फुल हैं, हम लोग कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमारे अंदर डिजायर, इसलिए भगवान पूर्ण होने के कारण उनकी कोई स्वार्थ नहीं होता है। और भगवान अजन्मा होने पर भी जन्म लेते हैं, मर्त्य, इंद्र ने स्तुति किया था, मतलब गाली दिया था, कहती ये मर्त्य है, ये मरण से है, मरता कौन है जो जन्म लेता है। तो भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, जन्म नहीं लेता हूं, अजोपि सन्नबे आत्मा भूतानम ईश्वर अभिसन प्रकृति सोमधिष्ठाया संभवामि आत्ममायया, मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता, मैं स्वतंत्र हूं, स्वराट हूं। कहते फिर क्यों जन्म लेते, तुम्हारे कुछ कामना नहीं, कहते देखो एक तो स्वार्थ है मेरा क्या है, परित्राणाय साधुनम, बस इतने में देखो पहला बात तो यही कहे, यही मेरी काम है, जब बिना संयम दुष्कृतम होता तो वो पहले कह देते कि ये मेरी पहला काम है, पहला काम क्या है, परित्राणाय सब, और उसको करने के लिए जो कष्ट देता है उसको मैं विनाशाय दुष्कृतम। और प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि देवकी और वसुदेव को रक्षा करने के लिए, क्योंकि कंस उनको सता रहा था, इसलिए मैं कंस को मारा, नहीं तो मैं मामा को क्यों मारता, मामा तो मेरा होता है ना, माँ का भाई आधा भाई है, मैं क्यों मारता। परंतु स्वार्थ क्या है, न मे भक्ता प्रणश्यति, इसलिए ये स्वार्थ को मैं पूर्ति करता हूं, इसलिए कहते हैं न स्वार्थम अवध्यत, भगवान अपने स्वार्थ कुछ नहीं जानते हैं, केवल भक्तों के स्वार्थ जानते हैं। सत्यम विधातुं निज भृत्य भासितम, भगवान इसको सत्य करते हैं जो भक्त ने बोल दिया है, यही उनकी स्वार्थ है। और हम लोग नहीं जानते कि विष्णु की स्वार्थ क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही स्वार्थ है भक्तों की, वही स्वार्थ होना चाहिए। भगवान का मैं हमेशा ही भक्तों का ध्यान रखता हूं, भक्तों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मैं वचन देता हूं अर्जुन तुम घोषित कर दो इस युद्ध मैदान में, न मे भक्त क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे, साधु को बचाता, इसलिए मैं तुम्हारा साथी बना हूं, विश्वरूप दिखा दे करके फिर बोल रही कि घोषणा करो, इतने बड़े स्वार्थ। परंतु हम अपने स्वार्थ को यह समझना चाहिए, भगवान जो कह रहे कि मुझे स्मरण करो, मेरी मुझे सब कुछ समर्पण कर दो, यही हमारे स्वार्थ है। और बलि ने यही किया, इसलिए बलि रुवाच, पहले शब्द दिए हैं बलि रुवाच, बाणी ने अपने स्वार्थ को जान लिया। और प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि भक्त सब कुछ समर्पित करके भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, और बड़ी महाराज ने यही किए, इसलिए उनका नाम है बड़ी। सब कुछ सैक्रिफाइस कर दी, जत करो सी जद स्नासी जत जीवसी ददासी जत जत तपस्वी कौनते तत् करो समर्पण। यज्ञ को भी सैक्रिफाइस कर दिया, सैक्रिफाइस को भी सैक्रिफाइस कर दिया। सोच यज्ञ कर रहा था ना, कहते वो घाट में जाए। और भगवान ने आगे कह दिए शुक्राचार्य को, अब देखो तो तुम्हारी जजमान है ना, चेला है, उसका पूरा कर दो, कमी रह गया माफ कर दीजिए। तो शुक्राचार्य कहे कि प्रभु जहां आप प्रकट हो गए यहां पर अपूर्णता कहां है, क्योंकि आपका नाम ही पूर्ण है। आपका नाम जहां कीर्तन होता है वहां भी सब पूर्णता हो जाता है। मंत्र में, तंत्र में, यज्ञ में, विधि में जो भी कुछ कमी रह जाता है ये सब पूर्ण हो जाता है आपकी नाम कीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे।